नमो देव दामो दरनंत विष्णु प्रसिद प्रभो दुख
षष्ठ श्लोक अनुवाद। हे देव, दिव्य रूप वाले, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं संसार दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से सद्य उत्पन्न प्रेम विशेष के कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सत्यव्रत मुनि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन को ही परम साधन मानते हुए कातर पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। नमः इत्यादि। इस श्लोक में तुभ्यम पद का अध्याय अन्य स्थान से उस शब्द का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि भय गौरव आदि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण यहाँ इसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर प्रसन्न होवें, उस प्रसाद का वर्णन कर रहे हैं। मैं संसारिक अथवा आपके अदर्शन से उत्पन्न दुख की परंपरा रूपी अविद्य में निमग्न हूँ, अतएव अतिहीन अर्थात परम आर्थ अथवा सत्य सहाय रूप साधन आदि से रहित परम अकिंचन अथवा जीवन मृत उस पर भी अज्ञे अर्थात उसके प्रति कारक आदि के विषय में अनभिज्ञ मुझे कृपा पूर्वक निरीक्षण की परंपरा द्वारा अथवा कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा द्वारा उस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित करें। इसी प्रसाद को और भी अभिव्यंजित कर रहे हैं, आप मेरे नेत्रों के गोचर हो जाएं। इस प्रकार प्रार्थना के क्रम से याचना की गई, क्योंकि प्रार्थ्य वस्तु की परम दुर्लभता के कारण सहसा प्रारंभ में ही उसका निर्देश अनुचित है। अंतर्दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा श्री भगवत पार्षदों द्वारा तर्क सहित की गई है, जिसे श्री भागवत अमृत के उत्तर खंड से विशेष रूप में जान लेना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के संबोधन में जो हेतु है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। हे देव अर्थात हे दिव्य रूप, ये देखने की इच्छा के विषय में हेतु है। दामोदर, ये भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आँखों द्वारा दर्शन योग्यता के विषयों में हेतु है। अनंत, नान्तो यस्मात्, यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु है। प्रभु अर्थात हे अचिंत्य अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त, ये इंद्रियों द्वारा अग्राह्य वस्तु की भी आँख द्वारा देखे जाने की संभावना के विषय में हेतु है। ईश अर्थात हे परम स्वतंत्र, ये अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की उपेक्षा न रखने के विषय में हेतु है। और भी विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक अथवा हे वृंदावन के निकुंज ग्रेवर आदि में प्रवेशशील, ये भी आँखों से दृश्य होने में दूर से आगमन में जो श्रम होता है वह भी आप में नहीं है, इस विषय में हेतु है। इन संबंधनों की अन्य प्रकार की योजना भी कर रहे हैं। अथवा हे अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न, हे विष्णु अर्थात सर्वव्यापिन, तथापि हे दामोदर, इस प्रकार परम वात्सल्य विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है, यह अर्थ ध्वनित होता है। अन्य संबोधन पूर्वोक्त अर्थ वाले ही हैं। इति दामोदर अष्टक के छठे श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति, यहाँ पर वैदिक भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम है वही प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चातक पक्षी की भांति स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे। चाहे हम प्यासे मरें तो मर जाएं, चाहे वज्र गिरे, परंतु पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी। श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, विशेषकर श्री राधा की पाल्य दासित्व पद को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। प्राण सखी एवं प्रिय नर्म सखी के अनुगत में राधा जी की एवं राधा जी के अनुगत में ही रहकर उनके प्रियतम जो श्याम हैं उनकी सेवा करूं, यही फल चाहता हूं और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। श्रीमन महाप्रभु एवं श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में ही प्रेम सेवा चाहिए। यशोदा के वात्सल्य प्रेम रज्जु से बंधे हुए कज्जल की रेखाएं कपोलों पर पड़ी हैं। मैया के भय से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। ब्रह्मांड जिनकी भ्रुकुटी मात्र से डरता है, आज वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं। मैया मुझे मारे नहीं, यही है ब्रज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम। यही बाल गोपाल हमें चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात है कि अभी उनकी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है। मैया के गंड चुंबन, कुंडलों के चुंबन, विशेष करके गोपियों के मधुर चुंबन को देखकर अंत में अपनी अभिलाषा और व्यक्त करेंगे। मैया के लाला की स्फूर्ति होना बहुत कठिन है। सत्यवत मुनि सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। वास्तव में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा एकमात्र नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब इस श्लोक में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इन्होंने सुना कि रास से जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाईं, तो क्रंदन करने लगी। रोती हुई उन्होंने जो गान किया वह गान गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। विशेषकर श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में बड़े प्रीतिपूर्वक उसका स्वादन करते थे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेदितम कलमशापहम शवन मंगलम श्रीमद आततम भूवि गृहन्ति ते भूरिदा जनः। श्रीमद भागवतम 10:31-9। वेरे संतप्त गोपियां कहती हैं, तुम्हारी लीला कथा अमृत नहीं, मृत अर्थात हलाहल विष है। उसका श्रवण करने से जीवन संतप्त हो जाता है। कवियों ने उसके महात्म्य का जो गान किया है वह वृथा है। वह उल्टे श्रवण मात्र से जीवन को दुखी बना देती है। वह आपात सुंदर परम मधुर है। उस लीला कथा के वाचक यथार्थ में जीवन को उच्छेद करने वाले हैं। वहाँ भूरिदा वे हैं जो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। गोपियाँ अत्यंत विरह आतुर होकर दिव्य उन्माद की अवस्था में कहती हैं, ये भूरिदा अर्थात काले की कथा को कैसे वितरण करते हैं। अपनी बगल में भागवत की पोथी को लिए हुए गली गली में फिरते हैं। कहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल श्रवण करो। बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं जिसमें जीव फंस जाता है। फंसने के बाद उसमें तड़पता है, रोता विलखता हुआ श्रीमद आततम अर्थात अपने घर बार धन संपत्ति कुटुंब परिवार को छोड़ देता है। भिक्षुओं की भांति या पक्षियों की भांति मधुकरी चुगता है अर्थात उनका स्थायी घर बार नहीं होता। जहाँ मिलता है वहीं खा लेता है, जहाँ मिलता है वहीं सो जाता है और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पता रहता है। सखी, ये भागवत की कथा का वितरण करने वालों का दोष नहीं, ये दोष तो श्री कृष्ण की मुख माधुरी या रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी एवं लीला माधुरी का है, जिसे सुनकर भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है। सखी, औरों की तो बात ही क्या, अपनी ही दशा देखो। इन कृष्ण कथा वाचकों जैसा अन्य कोई शिकारी नहीं है। इनकी कृष्ण कथा सुनकर सुनने वाले स्वयं भी रोते हैं और घर वालों को भी रोते हैं। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भूरिदा हैं, जिन्होंने पहले वेणु बजाकर हमारा घर बार छुड़ाकर, पागल बनाकर, हमें पथ की भिखारिन बनाकर छोड़कर चले गए। इनसे बड़ा और कृतज्ञ कौन होगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे अरे, मैं कृतज्ञ नहीं, तुम तो मेरी प्रिया हो और मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, मैं तो तुम्हारे ध्यान को बढ़ाता हूँ। इस प्रकार बातें करने लगे। मैं गया कहाँ, मैं तो कहीं अंतर ध्यान नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही था, तुम्हारा वीरे गीत सुन रहा था। यदि कोई गोपियों की भावना से युक्त होकर दीनहीन और उनकी कृपा को पाने की आशा से कीर्तन करें तो श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते, वे अवश्य ही दर्शन देंगे। श्री गुरु प्रदत्त नाम संकीर्तन को संबंध युक्त अनर्थ रहित होकर करेंगे तो जितनी भी लीलाओं का संबंध एवं माधुर्य है वे अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए रसराज महाभाव युक्त श्री शचिनंदन गौर हरि ने इस मंत्र का प्रचार किया। श्री राधिका जी कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं, इसलिए वे हरा हैं, संबोधन में हरे हुआ। कृष अर्थात आकर्षण करना और न आनंद अर्थात जो अपने रूप, गुण, वेणु, लीला से सभी को आनंदित करते हैं, वे कृष्ण हैं। राम दशरथ नंदन श्री राम नहीं, जो राधा जी के साथ विहार करते हैं उन्हें ही राधा रमन या राम कहते हैं। और श्री कृष्ण वंशी बजाकर गोपियों के मन को आकर्षण किया, इसलिए वे कृष्ण हैं। कितने कितने मधुर भाव इसमें हैं। कोई भी भाव या कोई भी कृष्ण लीला ऐसी नहीं जो इस महामंत्र से जुड़ी ना हो। यह तो गुरु वैष्णव की कृपा से ही हृदय में उदित होती है। ये कैसा मधुर से भी मधुर नाम है, यह इन्हीं महाजनों की कृपा से पहले हृदय में स्फुरित होता है, फिर वह उदित होकर उस लीला में प्रवेश कराता है। श्रीमद् भागवत में भी परोक्षवाद है। परोक्षवाद में प्रेम का स्वादन किया। सत्यव्रती मुनि श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति के लिए नमो देव दामोदरंत विष्णु कीर्तन कर रहे हैं। इसी कीर्तन से उनके हृदय में बाल गोपाल रूप उदित हुआ। किसी साधक भक्त की सिद्धि नहीं होती है तो वे क्या करें, दीनहीन कातर होकर महामंत्र का कीर्तन करें। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा बृहद नारद पुराण। यह महामंत्र कलयुग में अव्यर्थ अर्थात संजीवनी औषधि है। इससे जो कुछ चाहेंगे वही प्राप्त होगा। लौकिक जगत की तो बात ही क्या, परमार्थिक वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कीर्तन का महात्म्य ही ऐसा है। प्रारंभ में आराध्य देव को नमस्कार करना ही उचित होता है, इसलिए पहले ही देव को नमस्कार कर रहे हैं। नमो देव, देव अर्थात अत्यंत दिव्य रूप। कैसा दिव्य रूप है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणुः करे कंकनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम। वरजांगनों से परिवेष्टित यही श्री कृष्ण का सबसे सुंदर एवं मनोहर स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध रखा है। कमर रस्सी से पीछे से ओखल के साथ बंधे हुए हैं। देव का दूसरा अर्थ है किरणती अर्थात यहाँ बाल रूप में कीड़ा कर रहे हैं। मैं बाल गोपाल का ऐसा अलौकिक सुंदर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ विष्णु शब्द आया है। विष्णु सर्वव्यापक अर्थात ऐसी कोई जगह या हृदय नहीं जिसमें तुम ना हो, तुम सर्वत्र हो। श्रील सनातन गोस्वामी पाद विष्णु शब्द का एक दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं, विक्रीतम व्रज वदुम भीर इदम च विष्णु हो श्रद्ध्यानु तो अनुशून्याद अथा वर्णेद यह। श्रीमद्भागवतम 10:33-39। इस श्लोक में विष्णु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण से ही लिया गया है। वे श्री कृष्ण जो गोपियों के प्रेम का स्वादन करने के लिए वेणु वादन द्वारा उनको घरों से आकर्षण किया, फिर उनके प्रेम के विषय बने, इसलिए यहाँ विष्णु हो शब्द का अर्थ व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से है। दामोदर, यहाँ दामोदर के कई अर्थ बतलाते हुए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक तो यशोदा जी के वात्सल्य रस का स्वादन करने के लिए उनके प्रेम रज्जु से बंधकर यशोदा दामोदर हुए। दूसरा अर्थ है, जब श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान के बाद पुनः प्रकट हुए, सेवा कुंज और मान सरोवर में मान भंग कर रास प्रारंभ होने से पूर्व ही श्री ललिता और श्री विशाखा ने श्री कृष्ण के पीताम्बर और श्री राधा जी की ओढ़नी में गांठ बांध दी ताकि श्री कृष्ण इधर उधर नहीं भागें, इसलिए श्री श्री राधा दामोदर हुए। दामोदर का एक तृतीय अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं, श्री कृष्ण जब श्री राधा जी के पास अभिसार के लिए आ रहे थे, बीच में ही पद्मा जी उनको बुलाकर गौरी कुंड में ले गई तथा चंद्रावली के कुंज में ले जाकर चंद्रावली से मिलवा दिया। इधर श्री राधा जी उत्कंठित हो रही थीं, श्री रूप आदि मंजरियाँ श्री कृष्ण को ढूंढ रही थीं। ढूंढते ढूंढते जब वे गौरी कुंड में पहुँची तब श्याम से कहती हैं, अजी अघारी, वीर रूपी असुर ब्रज में आ गया है, सारे ब्रज का ध्वंस कर रहा है। इतना सुनते ही श्याम सुंदर चंद्रावली को समझाते हुए बोले, अरे सखी, अभी मैं असुर को मारकर आ रहा हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मंजरियाँ चंद्रावली के कुंज से श्री श्याम सुंदर को निकलवा कर श्री राधा जी से बुलवाती हैं और उनका वही गठबंधन करती हैं। तब से वे श्री श्री राधा दामोदर हुए। एक और स्थान पर सखियों ने श्री राधा जी का गठबंधन किया, तभी दामोदर हुए और इस स्थान का नाम गांठोली गांव हुआ। प्रसिद्ध प्रभो, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूँ, इससे मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको छोड़कर और कोई गति नहीं है। प्रभु का तात्पर्य ईश्वर से है, संतों की अहदु की कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री नंद महाराज गर्गाचार्य जी से कहते हैं, महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम निःश्रेयस्य भगवन कल्पते नान्यत क्वचित। श्रीमद् भागवतम 10:8-4। संतों का विचरण करना तो हम जैसे दीनहीन जनों पर कृपा करने के लिए ही होता है, ये नर लीला है, इसलिए नंद बाबा ऐसा कह रहे हैं। तत्वतः देखा जाए तो कहाँ नंद बाबा और कहाँ गर्गाचार्य जी, फिर भी नर लीला के अनुसार ऐसी ही लीला करते हैं। संतों की महती कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। साधन में कष्ट की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण के नित्य परिकर उनकी मैया ने भी श्री कृष्ण को बांधने के लिए कितना परिश्रम किया, तब बनने में आए, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या। प्रभु, हम संसार के त्रिताप में जलकर मर रहे हैं, हमें बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, केवल साधु गुरु वैष्णव जैसा साधन बताते हैं ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे 6 गोस्वामियों ने भजन किया है, राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे चावंशी वटे प्रेमोद्माद वशाद अशेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो चा कदा हरे गुणर्वरम भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। श्री षड गोस्वाम्य अष्टकम 7। मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो प्रेम और माद के वशीभूत होकर वीरे की सारी दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रेमोन्मत्त की भांति कभी राधाकुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे। सदा सर्वदा श्री हरि के श्रेष्ठ गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। अशेष दशया का तात्पर्य रोमांच, पुलक आदि, यहाँ तक कि मृत्यु अर्थात मूर्छा, मूर्छित हो जाते थे। इन महाजनों का भजन कहाँ और हमारा भजन साधन कहाँ। हमारे लिए तो मूर्छा की तो बात दूर रहे, एक बूंद अश्रु भी नहीं आता है। ऐसा भजन होना चाहिए जो हर क्षण साधु संग में रहकर अपने इष्ट देव की सेवा में मग्न रहें। रागनुगा जनों का दर्शन नहीं मिलता, उसके लिए तड़पते हैं। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः। शीषड गोस्वामी अष्टकम 8। और इससे बढ़कर जो रागात्मिक जन हैं उनका विरह अथवा विप्रलम तो अवर्णनीय है। कुछ कुछ श्री सुखदेव पाद ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, भ्रमर गीत में इंगित मात्र से दर्शन कराया है, और कुछ कुछ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल दिग्दर्शन कराया है कि श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। भाव भक्ति सहज नहीं, लाख लाख कलिष्ठ साधनों से भी साध्य नहीं। देखो उद्धव जी स्वयं नंदगांव में आए, उनको सभी रसों के रागात्मिक जनों का संग प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा जी का दूर से ही संग पाया, उनकी कायवी और सखियों के साथ संग हुआ, किंतु फिर भी ब्रज की कोई तृण लता गुल्म नहीं बन पाए। अंत में केवल उन्होंने वंदना ही की। आसम ओहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषि दीनाम, या दुस्तज्यम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर् विमिक्रियाम। वंदे ब्रज स्त्रीनाम पाद रेणु अभीक्षणस, यासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। श्रीमद् भागवतम 10, 47, 61 और 63। तात्पर्य यह है कि साधु संग पाकर भी हम लोग उस रस और भाव से वंचित हो जाते हैं। क्यों? इसका सीधा साधा तात्पर्य है, वास्तव में साधु संग जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारे उसे आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। क्या हम साधु संग के लिए छटपटाते हैं अथवा उत्कंठापूर्वक भजन करते हैं? जैसा कि श्री कृष्ण की लीला संगोपन के बाद ब्रजवासी की, उसमें भी श्रीमती राधा की कृपा से उद्धव जी को ब्रजभाव, विशेष कर श्री राधा जी के चरण रेणु की एक कण बनने की इच्छा जागृत हुई थी, उसे पाने के लिए आज तक गोवर्धन में श्याम कुटी में रहकर भजन कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें ब्रज की रजकण प्राप्त हुई या नहीं हुई। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए असार संसार की अनुभूति कर दृढ़तापूर्वक साधुओं का संग करो। यहाँ पर यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, सभी दुखों में अधिक दुख क्या है। भक्तों का विरह ही सर्वाधिक दुख है। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रु पुलक नहीं होता, कोई साधन भजन नहीं है। हमें आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। भरोसे का तात्पर्य क्या? आपकी कृपा से ब्रज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए अर्थात गोपी भाव, उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। जिस प्रकार हम साधन भजन कर रहे हैं उससे लाखों लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी ब्रज का प्रेम, उसमें भी सर्वोत्तम जो गोपी प्रेम है, वे एकदम असंभव है। हे प्रभु आप कृपा करें। खेद पूर्वक यहाँ कह रहे हैं कि गोपी भाव का एक छींटा भी लग जाए, ये छींटा कैसे लगेगा? ब्रज भाव भावित साधुओं की कृपा होने से ही यह भाव प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रभु, ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करके हमारा मनोभीष्ट पूर्ण करें। बाल गोपाल जो मैया से भयभीत होकर उखल से बंधे हुए हैं, रो रहे हैं, इस फुर्ती से भी कार्य नहीं चलेगा। हे प्रभु, इसी रूप को अपनी आंखों से दर्शन करूं, यही मेरी प्रार्थना है। पूर्व में कहा गया है कि पिपलायन ऋषि ने कहा है कि पहले मन में दर्शन होता है, फिर आंखों से दर्शन होता है। ब्रह्मा जी ने पहले मन में श्री कृष्ण के दर्शन किए, वर भी प्राप्त हुआ और वह वर भी पूरा हो गया, अर्थात सृष्टि करने की शक्ति भी आ गई। श्री गोप कुमार कहते हैं, आपका विचार बहुत अच्छा है, फिर भी मैं तो अपने नेत्रों से ही श्री मदन गोपाल का दर्शन करना चाहता हूँ। परम गुरुदेव श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, पहले दर्शन आत्मा में होता है, वही मन में प्रतिबिंबित होता है। श्री गुरु वैष्णव उन्हीं भावों को पूर्ण विग्रह के रूप में बाहर प्रदर्शित करते हैं। श्री गुरु वैष्णव कृपा करके श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति का बीज हमारे हृदय में रोपण करते हैं, जिससे श्रद्धा, निष्ठा, आसक्ति के रूप में वह बीज बढ़ता बढ़ता आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वह शर्त कि निरंतर ठीक ठीक रूप में साधु संघ के अनुसार हम चलें। भाव नेत्रों से भी हृदय में इष्टदेव की स्फूर्ति होती है। जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु मैया की रसोई पाते हैं, मैया उसे स्फूर्ति मानती है। गोपियों के पास भी कृष्ण आते हैं, गोपियां भी उसे स्फूर्ति मानती हैं। ऐसे साधक को ही प्रेम होता है, इस जगत को छोड़कर पर जगत में चला जाता है, तब उनका साक्षात दर्शन करता है। इससे अनर्थ की गंध भी दूर हो जाती है, फिर अप्रकट लीला वृंदावन में प्रवेश करता है। दूसरा अर्थ है, गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में इतनी सुंदर सुंदर कुंजे हैं, जहाँ श्री कृष्ण की नित्य निकुंज लीला संपन्न होती हैं। उन कुंजों को देवता आदि भी देखने में असमर्थ हैं, यही सर्वव्यापी का अर्थ है। आप हमें इन कुंजों की कोई भी सेवा प्रदान करें, इन कुंजों को झाड़ने की झाड़ू की एक सीख भी बन जाऊं, उससे भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। नमो देव दामोदर, आपका मुखारविंद सदा मेरे हृदय में स्फुरित रहे। कैसा मुखारविंद है, बाल गोपाल रूप, जो मैया के भय से भीत है, आँखों से आंसुओं की लड़ी झड़ रही हैं। श्री कृष्ण का ऐसा मुखारविंद जो मैया अथवा श्री राधा जी द्वारा चुंबित होता है, जो अधरों पर वंशी धारण करते हैं, जगत को आकर्षित करते हैं, स्वयं भी आकर्षित होते हैं, जिनके स्वरूप को देखकर चर अचर एवं अचर चर बन जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे हृदय में आविर्भूत होवें। सत्यवत मुनि सोच रहे हैं, बिना कीर्तन के श्री कृष्ण आविर्भूत नहीं होंगे, इसलिए कीर्तन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देव दामोदर इत्यादि। रास के समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, तब गोपियों ने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए कीर्तन किया, जो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण उस कीर्तन को श्रवण कर अपने को रोक ना सके और प्रकट हो गए। हे देव, दिव्य रूप विशिष्ट या अद्भुत रूप विशिष्ट, हे भक्तवत्सल दामोदर, अपनी मैया के प्रेम रज्जु से बंधने वाले, हे अच्युत, हे अचिंत्य शक्ति संपन्न, हे श्री कृष्ण, हे अनंत शक्ति विशिष्ट कृपालु, अनंत अर्थात सर्वव्यापक या सर्व अंतर्यामी, हे विष्णु अर्थात हे व्यापक, मेरे ईश्वर, समस्त जीवों के हृदय के साक्षी, हे प्रभु अर्थात आप परम स्वतंत्र हैं, आप किसी की भी उपेक्षा नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि साधन भजन की भी उपेक्षा नहीं रखते। यदि साधक संपूर्ण रूप से शरणागत है तो उसके साधन भजन की उपेक्षा नहीं रखते, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु और कौन जगत में होगा, जिनका दूर से दर्शन करने पर भी प्रेम प्रकट हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु पात्र अपात्र अर्थात जीवों के साधन भजन की उपेक्षा ना कर सभी को प्रेम बांटते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण श्री चैतन्य चैतामृत में है। जब श्रीमन महाप्रभु झाड़ीखंड से वृंदावन जा रहे थे तो जंगली पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लता आदि सभी को कृष्ण प्रेम वितरण किया। हे ईश अर्थात आप सबके नियामक हैं, आपकी कृपा पाने के लिए दूसरे की कृपा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्री गुरु वैष्णव की कृपा बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। आप मेरे प्रति प्रसन्न होवें। मैं संसार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूँ। कोटि कोटि अर्थात अगणित अनादि काल से मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। इसका कारण मेरी देहात्म बुद्धि है। मैं अत्यंत दीन हूँ। दीन अर्थात न मुझ में साधु कृपा का बल है न साधन का बल। मैं तो अज्ञेय हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा करें, साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता। श्री हरि गुरु वैष्णव पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं असहाय हूँ अर्थात मैं गुरु एवं भगवत कृपा से वंचित हूँ, पामर हूँ। इति श्री दामोदर अष्टक के छठे श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।